الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان کا یہ مہینہ آدھا گزر چکا اور آدھا ہمارے ہاتھ میں رہ گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آدھا رہ گیا ہے اس کو ہم بہترین طور پہ گزار سکیں اور وہ کام کر سکیں جو اس کو راضی کر دینے والے ہیں. آج ہم ملاقات کریں گے ایک تمیمی نوجوان سے جن کا نام عامر بن عبداللہ ہے. یہ تابعی ہیں, بصرہ میں رہتے تھے اور بصرہ اس وقت بہت مالدار تھا, یعنی وہاں پر خوب مال کی ریل پیل تھی, مال غنیمت بہت آتا تھا کیونکہ مسلمان فوج کی ایک طرح سے سمجھ لے چھاؤنی تھی. تو بڑے سونے کے ذخائر بھی جمع ہو رہے تھے یہاں پہ, لیکن عامر بن عبداللہ کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتے تھے. ان دنوں شہر بصرہ کے جو گورنر تھے وہ ابو موسیٰ عشری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عامر بن عبداللہ صلح ہو یا جنگ, سفر ہو یا حضر, ہر وقت ابو موسیٰ عشری کے ساتھ رہتے تھے, ان سے قرآن مجید سیکھتے تھے, پھر لوگوں کو آگے سکھاتے تھے. انہوں نے اپنے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کر لیا تھا. ایک حصہ تعلیم کے لیے وقت تھا اور اس حصے میں وہ مسجد میں لوگوں کو قرآن مجید سکھاتے تھے. دوسرا حصہ اپنی عبادت کے لیے وقت تھا اور اس میں وہ دنیا جہان سے بے نیاز ہو کے اللہ کی عبادت میں اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ ان کے پاؤں تھک جاتے تھے. اور تیسرا حصہ جہاد کے لیے وقف تھا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ کل بھی میں نے آپ کو عطا بن ابی رباح کا بتایا تھا, انہوں نے بھی اپنے اوقات کو تقسیم کیا تھا. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے وقت کو تقسیم کریں کہ اس یہ میرا ٹائم اس چیز کے لیے ہے, یہ اس چیز کے لیے, اس میں وہی کام کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے ہم کر کیا رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ سارا دن ایک ہی کام کو گھسیٹتے رہے. مثلاً اگر کچن میں گھس گئے تو پورا دن اب کچن میں ہی لگا دیا, صفائی شروع کیا تو سارا دن صفائی کرتے جا رہے ہیں, تھک ٹوٹ کے شام کو بیٹھ گئے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے مثلاً 2 گھنٹے میں نے کچن میں دینے ہیں, 1 گھنٹہ میں نے صفائی کو دینا ہے, اتنے گھنٹے میں نے اپنی عبادت کو دینے, اتنی دیر میں نے قرآن کو دینا, یہ میرا ٹائم اس کی چیز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے, یہ ٹائم اس کے لیے. اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہمارا پورا دن جو ہوگا وہ بڑا ڈسپلن کے ساتھ گزرے گا اور کوئی وقت ضائع نہیں ہوگا. ورنہ تھوڑی دیر ادھر بیٹھ گئے, تھوڑی دیر ادھر بیٹھ گئے, تھوڑی اس کے ساتھ گپ شپ کر دی, دن کا پتہ ہی نہیں چلا, دن تو تیزی سے گزر رہے ہیں. تو اس سے ہم سب بھی یہ لیسن لیتے ہیں کہ ہم بھی اپنے وقت کو تقسیم کر لیں. یہ اپنے دور میں بصرہ کے عابد زاہد مشہور تھے. بصرہ کا ایک رہنے والا کہتا ہے, میں ایک دفعہ سفر میں ان کے قافلے میں شامل ہوا جن میں حضرت عبداللہ بن عامر بھی سفر کر رہے تھے. رات ہوئی تو ہمارے قافلے نے جنگل میں گھنے درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب پڑاؤ ڈالا. عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا سامان اکٹھا کیا, اپنا گھوڑا درخت کے ساتھ باندھا, زمین سے گھاس اکٹھی کر کے اس کے سامنے پھینک دی اور خود درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو گئے. میں بھی دبے پاؤں ان کے پیچھے ہو لیا کہ آج میں ضرور دیکھتا ہوں کہ عامر بن عبداللہ رات کی تاریکی میں اور یہ درختوں کے خوفناک جھنڈ میں کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ درختوں کے درمیان دور تک گئے, یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. وہاں انہوں نے نماز شروع کر دی. نماز ایسی پڑھ رہے تھے کہ کیا کہنے, انہیں ایسی نماز خشوع سے بھری بھی اس سے پہلے کسی کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. نماز سے فارغ ہو کے انہوں نے اپنے رب سے جیسے باتیں شروع کر دیں, بڑے دلدوز انداز میں فرمانے لگے, اے اللہ تو نے اپنے حکم سے مجھے پیدا کیا, اپنی مرضی سے مجھے اس دنیا میں آزمائشوں میں ڈالا, پھر تو خود مجھ سے فرماتا ہے کہ سنبھل کے چل. الہی تو جانتا ہے کہ اگر مجھے یہ ساری دنیا دے دی جائے اور پھر کوئی مجھ سے تیری رضا کی خاطر इसका मुतालबा करे तो मैं तेरी रजा को तरजीह दूंगा, सारी दुनिया उसको दे दूंगा, और मुझे जरा बराबर भी कोई इसमें मुजायका ना होगा। ए रहम करने वाले, मुझे सकूने कल्ब दे। इलाही मैंने तुझसे ऐसी मोहब्बत की है जिससे दुनिया की हर मुसीबत झेलनी मेरे लिए आसान हो गई है, और तेरे हर फैसले को रजा और रग़बत के साथ तस्लीम करने का हौसला मिला। तेरी सच्ची मोहब्बत के होते हुए मुझे दिन रात में आने वाले नशेबो फराज की कोई परवाह नहीं। बसरे का रहने वाला वो शख्स बयान करता है कि फिर मुझे नींद आ गई, लेकिन नींद गहरी नहीं थी। मैं पूरी रात नींद और जागने की कश्मकश में मुब्तला रहा, कभी आंख लग जाती कभी खुल जाती, लेकिन वो पूरी रात नमाज में लगे रहे और इसी तरह अल्लाह ताला से फरियादें करते रहे, यहाँ तक कि सुबह होने के करीब हो गई। तो तब उन्होंने नमाज फजर अदा की और उसके बाद ये दुआ की, इलाही सुबह हो चुकी और तेरा फजल तलाश करने के लिए लोगों की चहल पहल शुरू हो गई। हर कोई अपनी किसी ना किसी जरूरत के पीछे है, और मेरी जरूरत ये है कि तू मुझे बख्श दे। ऐ इलाही करम फरमा, मेरी और इन सब लोगों की हाजात को पूरा कर दे, बेशक तू सबसे ज्यादा करम करने वाला है। या अल्लाह, मैंने तुझसे तीन चीजें मांगी थी, तूने दो मुझे अता कर दी और एक अता नहीं की, वो तीसरी चीज भी अता कर दे ताकि मैं तेरी रजा के मुताबिक जी भर के तेरी इबादत कर सकूं। फिर वो अपनी जगह से उठे, मुड़े तो उनकी नजर मुझ पे पड़ गई, तब वो घबरा गए, बड़े ही अफसरदल है जिसे कहा, ए भाई, क्या तू सारी रात यहां मुझे देखता रहा? मैंने कहा। फरमाने लगे, खुदा के लिए ये बात किसी को ना बताना। मैंने कहा, मुझे वो तीन चीजें बताएं जो आपने अल्लाह ताला से मांगी, दो पूरी हो गए, एक नहीं मिली। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपका ये राज लोगों को बता दूंगा। फरमाया, तेरी मेहरबानी, आज का ये वाकया ना किसी को बताना। हम तो शौक से कहते हैं लोग दूसरों को बताएं, हमारी शोहरत हो, लोगों को पता चले हम कितने नेक हैं। वो लोग अपनी नेकियां छुपाते थे। मैंने कहा, शर्त यही है कि आप मुझे बताएं। इसके बाद मैं लोगों को आपकी जिंदगी में ये वाकया नहीं बताऊंगा। तो फरमाने लगे, मुझसे सबसे ज्यादा दीन को तबाह करने का खतरा औरतों से था। मैंने अपने रब से इल्तजा की कि मेरे दिल से औरतों की मोहब्बत निकाल दे। उसने मेरी दुआ कबूल कर ली। अब मेरी हालत यह है कि औरत और दीवार को देखना मेरे लिए बराबर है। मैंने कहा, ये तो एक चीज हुई, दूसरी क्या है? फरमाने लगे, मैंने अपने रब से दूसरी ये इल्तजा की कि मैं तेरे सिवा किसी से ना डर। उसने मेरी ये भी दुआ कबूल कर ली, और अब मैं किसी से नहीं डरता इस जमीन व आसमान में सिवाय अल्लाह के। फरमाने लगे, फिर मैंने अल्लाह ताला से तीसरी इल्तजा की कि मेरी नींद खत्म कर दे, कि मैं दिन रात तेरी इबादत में लगा रहूं, लेकिन मेरी ये दुआ कबूल नहीं हुई। तो मैंने ये बातें सुनी तो उनसे कहा कि अपने आप पर रहम करें, आप तो सारी रात ही इबादत में लगे रहे, दिन में आप रोजा रख लेते, जन्नत तो इससे कम पे भी मिल जाती है, जहन्नुम के से बचाव के लिए इतना हलकान होने की क्या जरूरत है? अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, जैसे हम भी एक दूसरे को कहते ना, इतना अपने आप को थकाने की क्या जरूरत है, नहीं जन्नत इस पे भी मिल जानी है, जहन्नम से बचने के लिए इतना भी अपने आप को परेशान करने की जरूरत क्या है? फरमाने लगे, मुझे डर लगता है कि कयामत के दिन मुझे शर्मसार ना होना पड़े, जबकि उस वक्त शर्मिंदा होने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं इबादत में अपनी सारी तवानाइयां सर्फ कर देना चाहता हूं, फिर भी अगर अल्लाह की निजात मिल गई तो ये उसकी रहमत है, और अगर उसने पकड़ लिया तो मेरी ही कमी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी ऐसी सोच अता फरमाए कि सारी हम अपनी एनर्जी इसमें खपा दें, सारी हम अपनी ताकत इसमें लगा दें कि हम अल्लाह ताला की खूब अच्छी इबादत कर सकें, और फिर भी अपनी इबादत का जोम ना हो और उसका तकब्बुर ना हो, बल्कि तब भी यही सोचो कि अगर निजात मिल गई तो तब अल्लाह ही की रहमत होगी, मेरी कोई बढ़ाई नहीं इसमें, और अगर उसने मुझे किसी बात पे पकड़ लिया तो मेरी कमी होगी। हम कितनी दफा ऐसा सोचते हैं और कितनी दफा अपने आप को खड़ा करते हैं अल्लाह ताला की अदालत में कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हुई हूँ और मेरा हिसाब किताब शुरू हो गया, अल्लाह ताला मेरे से पूछ रहे हैं ये काम तुमने क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों करती थी ऐसा, तो मैं क्या जवाब दूंगी। कितने ही सारे गुनाह हैं जो हमारे दिलों में खटकते हैं, हमें पता है वो गलत है, कभी कभी जमीर कचोके भी देता है, लेकिन फिर हम उसको सुला देते हैं, फिर हम अपने आप को जस्टिफिकेशंस दे देते हैं, नहीं कोई बात नहीं, नहीं फलां भी ऐसा करता है, नहीं ये तो आजकल ये तो बहुत कॉमन है। कितनी दफा हम अपने आप को बहलाते रहते हैं, बहलाते रहते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने इसी गुनाह के बारे में पूछ लिया तो क्या होगा, क्यों नहीं हम अपने आप को कब्र में रखा बस सोचते, मैं कब्र में पड़ी हुई हूँ, मुझसे हिसाब किताब हो रहा, अब मैं क्या कहूंगी, उस वक्त मेरा साथी कौन होगा, उस वक्त के लिए मेरे पास नूर है या नहीं, उस वक्त तो बहुत अंधेरा होगा, रोशनी कहाँ से लाऊंगी, तो यहीं से लेनी है। कभी सोचते नहीं कि उस दिन जब फैसले होने होंगे और मेरे लिए कोई ऐसा फैसला हो गया जो मुझे पसंद ना आया, जो मेरे खिलाफ हुआ, तो मैं क्या करूंगी। कभी खुद को अल्लाह ताला की अदालत में खड़ा करके देखें, तसव्वुर में लेकर आया करें, और इसका बेहतरीन वक्त रात का वक्त है, जब तन्हाई है, खामोशी है, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं, उस वक्त सोचा करें। हाँ मेरे बिन अब्दुल्ला रात भर मुसल्ले पे खड़े होकर इबादत करने वाले ही नहीं थे, बल्कि दिन भर घोड़े की पीठ पे सवार होकर मैदाने जंग में लड़ते थे। जब भी जिहाद के लिए पुकारा जाता था, चाको चौबंद मैदान में उतर जाते थे, और सफर पर रवाना होने से पहले अपने काफले के अहबाब से मुखातिब होकर कहते थे, मेरे आपसे तीन मुतालबे हैं। वो पूछते वो कौन से हैं, फरमाते एक मुतालबा ये है कि मैं आप सबका खादिम बन के शरीक के सफर रहूंगा और आप इसमें इतराज ना करना, दूसरा मुतालबा यह है कि जब भी नमाज का वक्त होगा तो अजान मैं दूंगा और ये मेरा हक कोई ना छीने, तीसरा मुतालबा यह है कि मैं अपनी हैसियत के मुताबिक आप पर अपनी जेब से खर्च करूंगा, इस पे कोई इतराज ना करे। वो सब मान जाते थे तो उनके साथ चले जाते थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये फातह ईरान हजरत साद बिन अबी वक्कास जंगे कादसिया से फारिग होकर ईरान के शाही महल में जब थे, तो उमर बिन मकरन को हुक्म दिया कि माले गनीमत इकट्ठा करें और इसकी गिनती करें, ताकि गनीमत का पांचवां हिस्सा मदीना को बैतुल माल के लिए रवाना कर दिया जाए और बाकी गनीमत का माल मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाए। बहुत उम्दा माल, बहुत कीमती चीजें उनके सामने ढेर लगा दी गई, उम्दा नक्शो निगार वाली चीजें, सोने चांदी के बर्तन जिसमें ईरान के बादशाह खाना खाया करते थे, बहुत कीमती चीजें थी, कीमती लिबास, हीरे जवाहरात। वहां इन बादशाहों की तलवारें और कई जंगे सामान भी था। कारकुन हाजरीन के सामने माले गनीमत की गिनती कर रहे थे कि क्या देखते हैं, एक बिखरे हाल वाला गुबार आलूद शख्स एक भारी सा मटका उठाए हुए चला आ रहा है। लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसा बर्तन नहीं देखा था। माले गनीमत की जो भी चीजें थी वो इस मटके के मुकाबले में हकीर नजर आने लगी। इस बर्तन में झांका तो हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। लोगों ने इस शख्स से पूछा, ये कीमती खजाना कहाँ से हाथ लगा है? उसने कहा कि मार्के के दौरान गनीमत के तौर पर मेरे हाथ आया। उन्होंने पूछा कि इसमें कोई चीज तुमने अलग की है? फरमाया, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह की कसम, हीरे जवाहरात से अटा हुआ ये बर्तन और ईरान के बादशाहों की मिल्कियत में सारी दौलत मेरे नजदीक एक नाखून के बराबर भी नहीं है। अगर ये मुसलमानों के बैतुल माल का हक ना होता तो मैं कभी भी ये उठाकर तुम्हारे पास ना लाता। लोगों ने पूछा, अल्लाह आपको इज्जत दे, आप कौन है? फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, ये ना हो कि तुम मेरी तारीफ करने लगो। सुभान अल्लाह, मैं तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसकी बारगाह से सवाब की उम्मीद रखता हूँ। ये कहा, मटका रखा और चले गए। लोग हैरान हो गए। उन्होंने इनके पीछे एक आदमी भेजा कि जाके मालूम करें कि ये कौन है। वो शख्स इनके पीछे चलता गया, यहाँ तक कि वो अपने साथियों में मिल गए। तो उन्होंने जाके पूछा कि ये कौन है? कहा, तुम्हें नहीं मालूम, ये बसरा के जाहिद आमिर बिन अब्दुल्ला तमीमी है। इस कदर उनके अंदर ईमानदारी थी और दुनिया की कोई हिर्स नहीं थी। एक दफा ये वाकया पेश आया कि आमिर बिन अब्दुल्ला ने देखा कि बसरे की जो पुलिस के सरबराह का मुलाजिम है, एक गैर मुस्लिम जिम्मी को गर्दन से पकड़े हुए ले जा रहा है और वो लोगों से कह रहा है कि लोगों मुझे बचाओ, मुसलमानों अपने नबी के मुआहदे की हिफाजत करो। गैर मुस्लिम था, जिम्मी था, लेकिन जिम्मी वो होते हैं जो मुस्लिम मुमलिकत में गैर मुस्लिम रहते हैं जिजिया दे के, टैक्स दे के। ये सुनकर हजरत आमिर आगे बढ़े, जिम्मी से पूछा, क्या तूने टैक्स दिया है? उसने कहा हाँ। फिर वो सिपाहियों की तरह मुतवज्जे हुए कि इसको छोड़ दो। उन्होंने कहा, हम तो नहीं छोड़ेंगे। पूछा कि तुमने इसको क्यों पकड़ा हुआ है? उन्होंने कहा कि ये जो हमारे बड़े हैं उनके बड़े अफसर के बागीचे की सफाई करने के लिए हम इसको लेके जा रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े अफसरान होते हैं उनके पर्सनल काम के लिए। आमिर बिन अब्दुल्ला ने जिम्मी से पूछा, क्या तुम बखुशी ये काम करने को तैयार हो? उसने कहा, नहीं, मैं अगर बाग साफ करने में लग गया तो मैं अपने बच्चों के लिए कमाई कैसे करूंगा? अल्लाह के लिए मेरी मदद कर, मुझे इस मुसीबत से छुड़ाओ। अब वो किसी तरह भी सिपाही इसको छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो इन्होंने अपनी चादर फेंक के झटके से उसको छुड़ा लिया। फिर फरमाया, अल्लाह की कसम मेरी जिंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहदे को तोड़ा नहीं जा सकता। इसी दौरान लोग जमा हो गए इसी तूतकार को सुन के। पुलिस मुलाजमी ने हजरत आमिर बिन अब्दुल्ला पर बड़े जो साहब थे उनकी इताअत छोड़ने का इल्जाम लगाया। इनके मुतल्लिक ये भी कहा गया, इन्होंने देखें शादी नहीं की तो इन्होंने सुन्नत का इनकार किया, ये ना दूध पीते हैं ना गोश्त खाते हैं, इन्होंने हलाल चीज़ों को हराम कर दिया है, ये हुक्मरानों की मजलिसों से कन्नी कतराते हैं। इन इल्जाम की फाइल बना के अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान की खिदमत में भेज दी। हजरत उस्मान ने बसरा के गवर्नर को हुक्म दिया कि आमिर बिन अब्दुल्ला को बुलाएं और उनके ऊपर जो इल्जाम है उनकी तहकीकात करें। गवर्नर ने जब इनको बुलाया, कहा, अमीरुल मोमिनीन के हुक्म की तामील करते हुए मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। फरमाया, पूछें। गवर्नर ने पूछा, आप अल्लाह के रसूल की सुन्नत से एराज करते हुए शादी से इनकार करते हैं? फरमाया, मैंने इस सुन्नत का इनकार नहीं किया, मैं सिदके दिल से ये ऐलान करता हूँ कि इस्लाम में राहबानियत नहीं है। अलबत्ता शादी ना कराने की असल वजह यह है कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मेरा एक दिल है, क्यों ना इसमें सिर्फ एक अल्लाह ही के साथ लौ लगाई जाए। मुझे ये डर हुआ कि कहीं बीवी की मोहब्बत दिल में गालिब ना आ जाए। फिर उसने पूछा कि तुम गोश्त क्यों नहीं खाते? फरमाया, जब दिल चाहे और आसानी से मिल जाए तो खा लेता हूँ। उसने पूछा, तुम पनीर क्यों नहीं खाते? फरमाया, मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ पे आतिश परस्त आबाद है, वो पनीर बनाते हैं तो उसमें मुर्दार और ऐसी चीजें शामिल कर देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे डर होता है कि कहीं पनीर में कोई मुर्दार जानवर का कोई जरा सा भी हिस्सा ना हो। हाँ, अगर दो मुसलमान ये तहकीक कर दें, तस्दीक कर दें कि ये हलाल है, तो फिर खा लेता हूँ। गवर्नर ने पूछा, तुम हुक्मरानों की मजलिस में क्यों नहीं बैठते? फरमाया, तुम्हारे दरवाजे पर बड़े जरूरतमंद आते हैं, इन्हें अपने पास बुलाओ, उनकी जरूरियात पूरा करो। जिसको तुमसे कुछ गर्ज नहीं, इसके दर पे क्यों होते? उसको छोड़ दो, उसकी हालत पे रहने दो। गवर्नर ने हजरत आमिर बिन अब्दुल्ला की ये सारी बातें अमीरुल मोमिनीन तक पहुंचा दी और इन्हें इतला दी कि ना तो हजरत आमिर ऐसे हैं जैसी कि उनकी बारे में शिकायत की गई है, ना ही वो सुन्नत के इनकारी हैं, बल्कि इनके खिलाफ साजिशें हुई हैं। यानी इसका मतलब इंसान हक पे भी हो ना, तो कुछ लोग उसके मुखालिफ हो जाते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि इनके मुखालिफीन भी वहां पे हो गए थे, अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान ने हजरत आमिर को शाम भेज दिया और ये शाम में रहे। फिर जब ये बसरे से कूच कर रहे थे, तो बहुत से शागिर्द, बहुत से अकीदतमंद अलविदा कहने के लिए जमा हो गए। शहर से बाहर निकल के सब इनको सी ऑफ करने के लिए आए। फरमाया, लोगों, मैं दुआ करता हूँ और तुम आमीन कहना। सब लोग टिकटिकी बांध के देखने लगे, सब हसरत और अफसोस के साथ खड़े हुए थे, सबकी आंखें आंसू से रवा। आपने हाथ उठाया और आवाज़ें बुलंद कहा, इलाही, जिस किसी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए और मुझे बदनाम करने के लिए कोशिश की है, जो मुझे मेरे शहर से निकालने का सबब बना, मैंने उसे माफ़ किया, तू भी उसे माफ़ कर देना। ऐ दीनो दुनिया में आफियत अता करना, इसको दुनिया दीनो दुनिया में आफियत अता करना, मुझे और अपने और तमाम मुसलमानों को अपनी रहमत और माफ़ी की चादर में ढांप लेना। यानी अपने मुखालिफीन के लिए भी दुआ ही दे के गए और फिर शाम चले गए। सारी जिंदगी फिर बाकी शाम में ही गुजारी और बैतुल मकदस में डेरे डाल लिए। जो इनको गवर्नर ने सरकारी रहायशगाह दी थी, उसमें एक दिन भी नहीं रहे। जब मरजुल मौत में मुब्तला हुए, तो कुछ तीमारदार आए और क्या देखते हैं कि जार वो कतार रो रहे हैं। सबने कहा, रोते क्यों हैं? आपने तो जिंदगी में इतनी नेकियां की हैं, इतने कारनामे सर अंजाम दिए हैं। फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे ना तो दुनिया का लालच है, ना मौत से घबराहट है। रोता इसलिए हूं कि सफर बहुत लंबा है और आजादी राह बहुत थोड़ा है, और मैं इसी कश्मकश में मुबतला हूं कि जन्नत मिलेगी या जहन्नम। मुझे इल्म नहीं मैं किस तरफ जा रहा हूं। ये कहा और उनकी रूह परवास कर गई। कितने खुशबख्त थे। और ये वही बात है जो हमने पहले भी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की सुनी थी कि वो भी क्या फरमाते थे कि सफर बहुत लंबा है और ज़्यादा राह कम है। उनको ये फिक्र होती थी। और वाकई हम पहले भी बात कर चुके हैं, कश्ती मजबूत बांध लो, समंदर बड़ा तूफानी है, बहुत सारा अमल इकट्ठा कर लो, क्योंकि सफर बहुत लंबा है। इसमें बहुत सारे मरहले हैं, मौत का मरहला है, कब्र का मरहला है, हशर का मरहला है, पुल सिरात का मरहला है, मीज़ान का मरहला है, सवाल जवाब हिसाब किताब का मरहला है। कितने मरहले हैं, फिर जाके कहीं जन्नत है। आसान नहीं है जितना आसान लोगों ने समझ लिया। इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, और इन लोगों ने मेहनतें की और आज हमें मौका मिला, तो इनसे सीख के हमने भी मेहनत करनी। इस मैदान में खुद को थकाना है, और खास तौर पे इन दिनों में। इसमें कुरान को अपना साथी जरूर बना ले, जो इसको अपनी जिंदगी में, दुनिया की जिंदगी में साथी बनाएगा या कब्र में उसका साथी बन जाएगा। तो मैं तो कहूंगी जिसको अपने वालदैन से मोहब्बत है ना, वालदैन चाहे जिंदा हैं चाहे फौत हो चुके हैं, जिंदा भी होते हैं तो खवातीन को ज्यादातर ये हमेशा एक शिकायत रहती है कि हम अपने वालदैन की खिदमत नहीं कर सके। जाहिर है अपने शौहर के घर में होती हैं, उस तरह से नहीं कर सकती, तो जिंदा भी हों तो नहीं खिदमतें कर सकते, और दुनिया से चले जाएं तो फिर तो बिल्कुल ही सोचते हैं कि अब क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो दुआ तो उनके लिए बताई थी, लेकिन एक अमल ऐसा हमें पता चलता है कि जो हमारे वालदैन को इज्जत बख्श सकता है हमारी वजह से, और वो क्या है? कुरान का साथ। जिस औलाद ने कुरान को अपना साथी बना लिया, कयामत के दिन उसके वालदैन को इज्जतें अता फरमाई जाएंगी, इज्जतों का लिबास दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि ये तुम्हारी औलाद की वजह से तुम्हें मिल रहा है। कम अमल ऐसे हैं जिनके बारे में ऐसी बशारतें। तो कुराने पाक सिर्फ रमजान के लिए है नहीं, इसके बाद भी इसका साथ नहीं छोड़ना, इसको सीखना है, इसको समझना है, और फिर अमल के लिए खुद को तैयार करना है। और एक बात जरूर कहूंगी, अगर कभी इस रमजान में आपके दिल में ख्याल आ जाए ना कि बस बड़ा कुछ, बड़ा देख लिया, बड़ा कुछ कर लिया, अब मैंने नेक बनना है, अगर आपके दिल में ये बात आ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि आपके दिल में ये बात आई, तो आप करेंगे क्या? उन दोस्तों को छोड़ें जो दोस्त आपको अल्लाह से गाफिल करते हैं, ऐसी मजलिसों को छोड़ दें, नए दोस्त बनाएं जिनमें खुदा खौफी हो। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए। आज का जो जिक्र है वो जिक्र दिन का नहीं, वो रात का जिक्र है। वो रात में जब आपकी आंख खुले, जैसे हम कई दफा बाथरूम जाते हैं, वापस जब बिस्तर पे आते हैं फौरन तो नहीं सो सकते ना, 2-4 मिनट तो लगते हैं सोने में, तो उस वक्त आपने ये जिक्र करना है। और इस जिक्र की इतना ये जबरदस्त जिक्र है ना, इसकी फजीलत ये है कि ये जिक्र करने के बाद आप जो दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी। कभी कभी वैसे ही आंख खुल जाती है, फिर करवटें लेते रहते हैं, इधर उधर टॉस करते हैं बिस्तर में, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि इस जिक्र को हम करने के बाद दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी, तो फिर हम उस टाइम को जाया ना करें, बजाय बिस्तर में इधर उधर करवटें बदलने के, हम क्यों ना ये जिक्र कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को एक ऐसी घड़ी आती है जो मुसलमान इसको पा ले, वो उस वक्त अल्लाह ताला से दुनिया और आखरत की जो भलाई मांगे अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं। और ये घड़ी हर रात आती है, हर रात ऐसी घड़ी होती है कबूलियत की। तो क्यों ना हम अपनी रातों में, चाहे बिस्तर पे लेटे में, आपका वजू नहीं भी है, आंख खुल गई है, जिक्र करके दुआ कर ले, हो सकता है वो ही घड़ी हो कबूलियत की। लोग अक्सर ईमेल करते हैं कि आप हमें इस चीज का वजीफा बता दें, इसका वजीफा बता दें। वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजीफे बता के गए हैं उनको तो समझ लो, ये सब वजीफे ही हैं, लेकिन हमें कोई लंबे चौड़े वजीफे चाहिए होते हैं। लेकिन कितना आसान है ये, इतना आसान वजीफा है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस शख्स की रात को आंख खुल गई फिर इसने ये कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर अलहम्दुलिल्लाह व सुबहानल्लाह ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله। यानी ये जो तीसरा कलमा है वो भी, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, ये तो हम पहले भी ये जिक्र कर चुके हैं। और फिर वो अगर कहता है अल्लाहुम्मा अग़फिर ली, अल्लाह मुझे माफ कर दे, या कोई भी दुआ मांगता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी दुआ कबूल की जाती है। अगर वुजू करके नमाज पढ़ लेगा नमाज कबूल होगी। इतने जबरदस्त ये बात है। अकबर। तो इसलिए इसको याद रखना है हमने रात के लिए, आसान ही है। तो इसी तरह जो आज की दुआ है, ये दुआ भी ऐसी दुआ है जिसमें अल्लाह ताला के वो अस्मा मुबारक हैं जो बहुत सारे उलमा कहते हैं कि इसमें आजम है, और मुझे ये दुआ बहुत ही पसंद है। इसलिए कि इस दुआ के अंदर मेरी सारे ही मसलों का हल है। दुआ क्या है? या हय्यू या कय्यूम बि रहमतिका अस्तगीस फअस्लिह ली शअनी कुल्लहू वला तकिलनी इला नफसी तरफत आइन। या हय्यू या कय्यूम बि रहमतिका अस्तगीस, अल्लाह ताला मैं तेरी रहमत की फरियाद करती हूँ। फअस्लिह ली शअनी कुल्लहू, अल्लाह मेरे सारे ही कामों की सलाह कर दे, सारे काम मेरे ठीक कर दे। यानी चाहे दुनिया के हैं, चाहे आखरत के हैं, बच्चों के हैं या बड़ों के हैं, शौहर की तरफ से हैं या किसी और किस्म के हैं, सेहत के हैं मामलात, रिस्क के मामलात हैं, कुछ भी हैं, अल्लाह ताला मेरे सारे ही मामलात की सलाह कर दे। अल्लाह तकिलनी इला नफसी तरफा तहीन, अल्लाह ताला एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले मुझे ना करना। तो सबसे पहले तो आपने अल्लाह ताला के इसमें आजम से दुआ कर ली, वैसे ही इसमें आजम से मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं। अगर ये इसमें आजम ही है जिसका किसी को डेफिनेट नहीं पता, लेकिन ज्यादातर यही कहते हैं ये इसमें आजम है या हय्यू या कय्यूम, तो हमारी तो सारी ही चीजें टेकन केयर हो गई ना, दुनिया की भी और आखरत के भी सारे ही मसले आपने अल्लाह के सपुर्द कर दिए कि वो ही सब कुछ ठीक करते हैं। तो जब बहुत ज्यादा लंबी दुआ करने का वक्त ना हो तो आप इंशाल्लाह ये दुआ करेंगे तो सारी ही चीजें आपकी इसमें कवर हो जाती हैं। एक और बात बताना चाहती हूँ जो कि बहुत लोगों का सवाल है, सोचा कि यहीं पे बता दूँ। ख्वातीन को पीरियड्स के मसले होते हैं तो ये सवाल है कि क्या गोलियां खा के पीरियड्स को बंद कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं रमजान में, अगर कोई उसके हेल्थ इश्यूज ना हो, उससे कोई ऐसी चीज ना हो कि जो सेहत को खराब करने वाली है, तो तब आप ऐसी गोलियां इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि बंद हो जाए, ताकि आप अपने रोजे और इबादत अच्छे तरीके से कर सकें। और दूसरे किसी ने पूछा है कि अगर हम रोजे में इंसुलिन लगा लें, तो हाँ जी वो भी लगा सकते हैं। कोई इतना रोजा इस वजह से ना छोड़े कि मुझे शुगर है, मैं इंसुलिन नहीं लगा सकती तो इसलिए मैं रखती ही नहीं, नहीं फिर आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। और मैं आज आपको ऐसा भी एक अमल बताना चाहती हूँ कि इतना आसान है वो अमल, लेकिन सुबहान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये कर लेगा ना तो जन्नत के आठों दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे। आपको पता है ना जन्नत के आठ दरवाजे हैं, हर दरवाजा कोई खास अमल करने वाले के लिए। मसलन जैसे आपने सुना होगा बाबू रैयान, ये उनके लिए जो रोजे बहुत रखते थे। यानी कोई ऐसी सिफत जो इंसान के अंदर, उस इंसान में खास हो, वो उस सिफत की वजह से पहचाना जाता हो कि ये फलां है ना, ये काम बहुत करती है। या जैसे एक बाबू सदका है, एक बाबू सलात है, एक बाबुल जिहाद है, एक बाबू रयान है, तो ये यहां से वो ही खुश नसीब जाएगा जो वो काम करता हो। मसलन अगर कोई बहुत नमाजें पढ़ता है और बहुत नवाफिल अदा करता है, वो बाबू सलात से जाएगा। सदका कोई बहुत देने में यानी इतना सखी है, कोई उसके दरवाजे से खाली जाता ही नहीं, वो बाबू सदका से जाएगा। तो इसलिए अगर जिस दरवाजे से हम जाना चाहते हैं, उस काम को, वो काम हमारी पहचान बन जाए, यानी हमारी खासियत बन जाए, तो वो उस दरवाजे से जाएगा। लेकिन कोई खुश नसीब ऐसा भी होगा जिसके लिए आठों दरवाजे ही खुल जाएंगे। और कितना आसान अमल है कि क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुम में से वुजू करे और अच्छे तरीके से करे, फिर कह दे अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुह, इसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खुल जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो हमने वुजू तो करना ही होता है, क्यों ना ये कह दे अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुह, आसान ही है। कितनी देर लगी मुझे कि कहने में, 1 मिनट भी नहीं लगा। चंद सेकंड लगे, बस ध्यान देने की बात है कि हम इन चीजों के ऊपर ध्यान रखें, फोकस करें इनको, तो ये सारे काम हो सकते, और ये कोई भारी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम वो काम करें जो उसकी रजा वाले हों। अल्लाह ताला हमें याद भी करा दे और हमसे हमें तौफीक भी अता फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।